ओम शांति। 20वीं सदी के शुरुआत में एक बहुत ही अद्भुत नर्तक डांसर इस विश्व नाटक में कभी हुआ था। वो एक ऐसा डांसर था जिसे गॉड ऑफ डांस कहा जाता है। कौन हो सकता है? निंजिंस्की। निंजिंस्की रशिया का। उसमें कुछ ऐसी एक अद्भुत बातें थी निंजिंस्की में कि जब वो डांस करता था बैले डांस, कि डांस करते करते कभी कभी ऐसा होता था कि वो बस डांस ही करते रहता था। वो खुद को रोक नहीं पाता था और इस धरती पर शायद ये एकमात्र ऐसा नर्तक डांसर हुआ कि जिसके लिए कहा जाता है उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को चैलेंज कर दिया। वो ऐसा डांस करता था, ऐसा घूमता था, ऐसा हिलता था, ऐसा हवा में उड़ता था कि जब नीचे गिरता था तो धीरे धीरे गिरता था। जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो हर वस्तु में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तुरंत गिरनी चाहिए, पर वो ऊपर छलांग लगाने के बाद पंख जैसे गिर रहा है, ऐसे 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 गिरता था। जैसे कि कोई पक्षी उतर रहा है। उसको कई बार लोगों ने पूछा, ये तुम कैसे करते हो? तो वो कहता था कि जब ये होता है मुझे पता नहीं चलता ये कैसे होता है। कृत्य और कर्ता कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं, नहीं तो ये असंभव है। जो वस्तु ऊपर से गिरेगी सीधा गिरनी चाहिए, धीरे धीरे कैसे कोई गिर सकता है? परंतु ये देखा गया और अपने समय में वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। परंतु वो उसके ऊपर था, वो कभी बीच में ही रुक जाता था तो रुक जाता था बस, फिर सामने कोई भी हो, और कभी डांस करता था तो तीन तीन घंटे और छह छह घंटे तक डांस करते रहता था। बाद में तो उसका ये सब बंद हुआ और मानसिक बीमारियां हो गई, वो एक दूसरी कहानी है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स को चैलेंज करने वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाने वाला कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा, परीक्षण किया कि ये कैसे हो सकता है, कैसे कोई व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जैसे मुक्त हो रहा है। और जब उसे पूछा गया तो वो कहता है, ये जब होता है और कैसे होता है मुझे पता ही नहीं चलता। और जितने भी महान कार्य हुए वो एक शून्य की अवस्था में होते हैं। जब मैं कुछ करने जाता हूं तब वो नहीं होता, और जब मैं कुछ नहीं करता हूं तब वो अपने आप हो जाता है। ऐसे अनुभव बहुत सारे वैज्ञानिकों के हैं। सोच रहे एक चीज को पकड़कर, एक चीज, एक घटना, एक व्यक्ति, एक संबंध, एक बात, एक अन्वेषण, एक खोज, उसको पकड़कर सोच रहे उसके विषय में, जब तक सोच रहे उससे मुक्त नहीं हो पाते। और जैसे ही सोच हट गई और कहीं और लग गई, उसका जो राज है वो समझ में आ जाता है। शून्य की अवस्था में परम की उपलब्धि होती है। इसलिए अमृत वेला प्लेन बुद्धि होके बैठ जाना, बिना ये सोचे कि क्या पाना है, और उस अवस्था में जीवन की जो बातें हैं, जीवन में हो रही जो घटनाएं हैं, उनके उत्तर आएंगे। हमारे जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। वो उत्तर मिलेंगे मौन में, वो उत्तर मिलेंगे शून्य की अवस्था में, वो उत्तर मिलेंगे निर्विचार की अवस्था में। और जो निंजिंस्की के बारे में बताया, ऐसे लोग थोड़े से अलग होते हैं संसार से हटके, उनको समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दुनिया को खुश करने के लिए काम नहीं करते। उनके कर्म कोई फैंसीफुल अट्रैक्शन नहीं है जिससे प्रसिद्धि मिल जाए। वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना है, फिर उससे कोई लेना देना नहीं कि बाहर उसकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जो हो रहा है वो अंतर जगत से आ रहा है। कल की अव्यक्त मुरली, 9 प्रश्न है, उसमें कितने प्रश्न है? 9। और 9 प्रश्नों का सार एक ही है, देह के भान से परे रहना, धरती के आकर्षण से परे रहना। ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो देह में फंसाए रखती है, और जो व्यक्ति जितना देह में फंसा है वो इतना ही दुखी है, क्योंकि देह में जो व्यक्ति फंसा है तो हमारी देह में कुछ होता है तो दुख। हम जिससे संबंधित है उनकी देह को कुछ होता है तो दुख, क्योंकि देह का जगत में दुख है, क्योंकि चेतना देह के इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए जैसे ही अशरीरी हो जाती है आत्मा, अपने आप सारी उलझने, गहरे से गहरे दुख, गहरे से गहरी पीड़ा, दर्द स्वतः विलीन हो जाते हैं। तो 9 प्रश्न है, इन 9 प्रश्नों की हम चर्चा आज करेंगे। मुरली की चर्चा कल पांडव भवन में हुई थी। मुरली कैसे सुने, मुरली का क्या महत्व है, मुरली पर मुरली थी तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा था कल की मुरली से? पहला था पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या है? अव्यक्त फरिश्ता बनना। फरिश्ता अर्थात जो इस कार्ब में नहीं, जैसे हमें यह अभ्यास है कि मैं इस साकार शरीर में हूं, 5 तत्वों के कार्ब में हूं, यह अभ्यास करना मैं लाइट के कार्ब में हूं, मैं लाइट के शरीर में हूं। जितना जितना चेतना शरीर से दूर रहने का की अभ्यास करती है, किसी भी रीति से, चाहे संकल्प करो, चाहे पढ़ो, चाहे प्रकृति के सानिध्य में जाओ, चाहे ज्ञान में खो जाओ, चाहे योग में खो जाओ, चाहे सेवा में, जो जो चीज शरीर को भुलाए वो फरिश्ता स्थिति है, और जो जो चीज शरीर को याद रख कर आए वो फरिश्ता स्थिति नहीं है। तो फरिश्ते की सिंपल परिभाषा है कि देह के भान से, कॉन्शियसनेस से, जगत से, संबंधों से थोड़ा सा, थोड़े समय के लिए ऊपर उठ जाए। तो यही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? अंतिम लक्ष्य अव्यक्त स्वरूप फरिश्ता बनना। फरिश्ता कोई ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं कि जिसके पंख है और जो ऐसे उड़ रहा है, वो तो आकार दिया है। फरिश्ता किसी रूप का नहीं, स्थिति का नाम है, जिसमें हम संसार में हैं परंतु शरीरों को नहीं देख रहे। यहाँ की तृष्णा इच्छा वासना विकार जब निकल जाते हैं और विलीन हो जाते हैं तो फिर शरीर में कुछ रस नहीं रहता, और यहां पर ही यदि विकार और वासना है तो केवल शरीर दिखाई देता है। शरीर, 3 दिन पहले मुरली थी, हमको तो कैसी चाहिए, काली नहीं गोरी, वैसे से हम क्या करें, हमें तो गोरी चाहिए। शरीर से नफरत आ जानी चाहिए, उसी मुरली में लाइन थी, कौन काला कौन गोरा, जब आत्मा ही काली है तो कहां से शरीर गोरा होगा, जहां ठंड है वहां चमड़ी सफेद। तो जो लक्ष्य है यहां का और हम यहां हैं, यह सोचना कि मैं बन चुका हूं। वो जो निंजिंस्की था, उसके मां बाप भी डांसर थे, उसकी बहन भाई भी डांसर, बचपन से ही डांस डांस डांस, और वो डांस ऐसे करता था कि उसको खबर ही नहीं रहती थी कुछ, जैसे देह के भान से परे निकल जाता था, किसी एक अज्ञात जगत में पहुंच जाता था, और जो कुछ होता था लोग अवाक उसको देखकर, कुछ कुछ वीडियोस भी है बहुत पुराने ब्लैक एंड व्हाइट उसके डांस के, ऐसे उड़ गया और धीरे धीरे पंख की तरह नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे, और ऐसे पैर रख रहा है फिर उड़ रहा है जैसे कोई फरिश्ता है। और अध्यात्म का उसे कोई पता नहीं, उसे कोई लेना देना भी नहीं, वो तो संसारिक व्यक्ति था। पर ऐसे संसारिक व्यक्तियों में भी ऐसी घटनाएं देखी गई कि जो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे निकल जाते हैं। तो हमें भी इस जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, परिष्ठा, अर्थात मैं किस में हूं, लाइट के कार्ब में हूं। अगर मैं लाइट के कार्ब में हूं तो दूसरी आत्माएं भी किस में है, लाइट के कार्ब में। एक होता है खुद को फरिश्ता देखना और एक है दूसरों को भी उसी रूप से देखना। ये सब आत्माएं हैं, चमकती हुई मणियां, और ये लाइट का कार्ब है, न स्त्री है न पुरुष, स्त्रीत्व और पुरुषत्व से ऊपर। फिर दुख नहीं होगा, नहीं तो संसार में इतनी घटनाएं हैं कि हर घटना दुख देने वाली है, परंतु हां जिसमें हम अटैच है वो हमको ज्यादा दुख देती है। दूसरों के घर जो हो रहा है वो हमें दुख नहीं देती है, क्योंकि वो हमारा नहीं है। जैसे एक मां है, उसका बच्चा स्कूल से नहीं आया, लेट हो गया, और वो भाग रही है स्कूल की तरफ, क्यों नहीं आया अभी तक मेरा बेटा, स्कूल का टाइम तो हो चुका है। वो पूछती है किसी को, ऐसे बच्चे को देखा, वो कहते हैं नहीं देखा। वो बताती है कि ऐसे ऐसे उसने शर्ट पहनी है, ऐसा ऐसा उसका टाई है, ऐसे ऐसे उसके शूज है, और एक भाई एक आदमी कहता है हाँ मैंने अभी भी देखा, अभी अभी वहां एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ही बच्चा था। तो वो और घबराती है, भाग के जाती है, भीड़ जमी है, नीचे एक बच्चा घायल पड़ा है, और वो सब भीड़ को हटाती है और देखती है मेरा नहीं है। जैसे ही मेरा नहीं है, आहत राहत हो गई, पहले आहत थी राहत आ गई। मैं के बंधन, देह के बंधन दुख के कारण है। तो पहला प्रश्न है लक्ष्य क्या है जीवन का, तो लक्ष्य है इस देह के भान, अभिमान, आसक्ति, भोग, विलास, संबंध, भाषा, स्थान, अहंकार, देह के रिश्ते नाते, इन सब से चेतना ऊपर उठ जाए, और यह जीवन भर का लक्ष्य है। एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि जन्म 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 देह में रही है, मित्रों से देह से ही संबंध जोड़े हैं, इसलिए उसकी आदत पड़ गई है उसको देहधारी की। देहधारी चाहिए, नहीं तो बेचैनी होती है। किसी को कहो अकेले यहां रहो एक मास, किसी से बात नहीं करना, एकांत में दो ही लोग रह सकते हैं, एक योगी और दूसरा भूत, ऐसी इंग्लिश में कहावत है, घोस्ट और सेंट, ये दो ही लोग रह सकते हैं। योगी होगा तो उसे परम आनंद आएगा एकांत में, और जो खंडहर होते हैं वहां क्या होते हैं, वो घोस्ट होते हैं वहां। तो देह के भान से कैसे परे जाए, कैसे देह को भूले, क्या करना चाहिए, क्या करें, कम हो जाए, चलो भूले ना, तो थोड़ा सा आसक्ति कम हो जाए इस शरीर की, क्या किए जाए। ये चिंतन करना, नुकसान क्या हुआ दैहिक संबंधों से, ये सोचना ये देह का वास्तविक रूप है क्या, इस चमड़ी के अंदर है क्या इतना बीमारियां, बुढ़ापा, ये देखो तो वैराग आएगा देह से। ये ना देखो और केवल देह सुंदर है इसका चिंतन करते रहो तो उस देह से और आकर्षण बढ़ता है। ये सोचो कि यह देह मिथ्या है, ये सोचो कि यह देह जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या है, पतित, विकारी, जर्जर, झूठन का झूठन का झूठन का झूठन, कितने लोगों ने इसको भोगा है जन्म जन्म, झूठा है ये। अगर सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक ही विकार है काम, और उसका एक ही कारण है केंद्र देह, बस इस देह यहां है और सारा मीडिया घूम रहा है, सारी फिल्में घूम रही है, सारी मैगजीन, सारे नॉवेल, सारा संसार, सारे युवक, सारा युद्ध उस देह के इर्द गिर्द घूम रहा है, जैसे ये बहुत कोई अच्छी वस्तु है। तो देह जब तक हमें खुद आत्मा का ज्ञान नहीं, हम कैसे देख सकेंगे, ज्ञान से भी ज्यादा अनुभव। केवल ज्ञान तो इंफॉर्मेशन है, केवल जैसे ये मोबाइल है, इसके चार कोने हैं, ये काले रंग का है, ये कोई ज्ञान थोड़ी है, ये सृष्टि चक्र है 5000 वर्ष, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये सूक्ष्म वतन है, आत्मा नीचे आती है फिर इतने जन्म लेती है, अब भगवान आया है, एक रीति से देखा जाए तो ये केवल सूचनाएं हैं। ज्ञान तो इसके परे है, इसके आगे है, ये तो शुरुआत मात्र है। हम अगर मैं ये कहूं कि ये मुझे पता है मोबाइल क्या है, काले रंग का है, ये चार ये है, क्या मुझे ज्ञानी कहा जाएगा? आत्मा यहां ज्योतिबिंदु है, भ्रुकुटी में है, परमात्मा उधर है, ये परम धाम है, ये घर है, ये सतयुग है, ये पांच युग है, और ये मेडिटेशन है, आत्मा समझ के बाप को याद करो, ये सूचनाएं हैं। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, और नॉलेज के भी आगे विजडम है, विवेक, वो उसके आगे है। तो पहला प्रश्न है जीवन का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है शरीर से परे, और विधि है शरीर के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना, विधि है आत्माभिमानी ज्यादा से ज्यादा रहना, विधि है मौन, विधि है एकांत, विधि है शक्तिशाली अमृत वेला। शक्तिशाली अर्थात जिसमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाए, शक्तिशाली अर्थात शरीर की सुधबुद्ध, शरीर का भान, शरीर है यही भूल जाए, शक्तिशाली अर्थात जैसे अनुभव हो करने के बाद कि आत्मा में पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई जो आज तक नहीं थी, ऐसी नई शक्ति उसमें प्रकट हो गई, ऐसा अनुभव। और ये अनुभव कि हमने सारे विश्व की परिक्रमा कर ली, और ये अनुभव कि हम छोटे किसी घर के नहीं है, किसी देश के नहीं है, सारे जगत के है। आत्मा बंधन से मुक्त हो जाए शरीर के और मुक्त विचरण करे सारे विश्व में, ये जो अमृत वेला है, अगर अमृत वेला नींद में जा रहा है, साधारण हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो शरीर के भान से मुक्ति का कोई चांस नहीं। शक्तिशाली अर्थात संकल्प पावरफुल हो, उसमें रात को सोने की विधि शक्तिशाली हो, तब प्रॉपर उसी टाइम पर आंख खुलेगी। जो 3 बजे उठता है बराबर 3 बजे उठेगा, उसके लिए 3:15 बजे उठना भी जरूर उसने कोई अपराध किया है रात को सोते समय, जरूर कोई श्रीमत का उल्लंघन किया है। हजारों प्रश्न हैं संसार की आत्माओं के और ब्राह्मणों के भी, कितना अच्छा यदि हो जाए सबके सब शक्तिशाली अमृत वेला करने लगे, किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सारे प्रश्नों का हल उत्तर अमृत वेला है। कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, लौकिक अलौकिक किसी भी जीवन का प्रश्न हो, और यहां तक कि किसी और के भी जीवन का प्रश्न हो, और यदि हम उससे चिंतित है, उसका भी उत्तर हमें अमृत वेला ही मिलेगा। पर वो इतना पावरफुल अमृत वेला होने चाहिए, और हो सके तो 3:30 बजे के पहले वाला अमृत वेला, 3:30 बजे के बाद वाला नहीं। दो प्रकार के अमृत वेला है, एक है पोस्ट 3:30, एक है प्री 3:30। In the sibilance of night, the answer shall come. रात का जो सन्नाटा होता है, रात का जो आवाज होता है ना, उसको सिबिलेंस कहा जाता है। योगी को उस रात के सन्नाटे में सब कुछ पता चल जाता है। वो राज जो पंचेंद्रिय द्वारा नहीं पता चलते, वो अनुभव जो बुद्धि से सोच रहे दिन रात सोच रहे क्या करूं, तब पता नहीं चलते। शरीर से जैसे ही व्यक्ति डिटैच हो जाता है, उत्तर वहां आ जाता है। उस तितली के पीछे भागो 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 भागो, वो और दूर भागती है। थक के शांत होके बैठ जाओ तो तितली यहां आके बैठती है उत्तर की। तो जीवन के आइंस्टाइन ने लिखा है एक जगह कि जब मैं कोई संशोधन करता हूं और दिन रात उसके विषय में सोचते रहता हूं, उत्तर मुझे मिलता ही नहीं, और फिर छोड़ देता हूं, शांति से बैठ जाता हूं, उस शून्य की अवस्था में उत्तर अवतरित होता है। जो शुरुआत में कहा निंजिंस्की, शून्य में ही, निर्विचार में ही, क्योंकि प्रॉब्लम जो हुई है वो विचार से हुई है, सोच से हुई है। इतने सोच, दिन रात सोच रहे। आज हमारी ओपीडी में एक माता आई थी, और वो माता दिन रात बड़बड़ करती रहती है, बोलती रहती है। अभी 1 मास से क्या बोल रही है उसका कोई अर्थ नहीं है। वो उसकी बचपन की बातें, उसका पति है नहीं, वो पति से बात कर रही है, बच्चे से बात कर रही है, बच्चा मर चुका है, और वो पागलों जैसी बोलती रहती है, रात में भी बड़बड़ करती रहती है। ऐसी विक्षिप्त अवस्था है। विचारों की जो स्पीड है इतनी ज्यादा है कि उसे एक प्रश्न पूछो तो वो लिंक टूट जाती है, वो दूसरा उत्तर देती है। वो दूसरा उत्तर पूछो उस के बारे में जो उसने बोला, वो तीसरा प्रश्न कुछ चालू करती है। विचार इतने तेज भाग रहे हैं, एक के बाद। और योगी अर्थात जिसमें संकल्पों का अभाव है, कमी, इसलिए अपने जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है? अमृत वेला, क्योंकि यही वो समय है जब विचार कम होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। उस समय सुस्ती, नींद, आलस, ये कुछ ना हो, अलर्ट, पर ऐसा होने के लिए दिनचर्या की तरफ बहुत बड़ा बहुत सारा ध्यान चाहिए। दिन में श्रीमत का उल्लंघन, माया दंड देगी। अमृत वेला थोड़ा सा 5 मिनट लेट उठाकर, 5 मिनट, 3:30 बजे उठता है, 3:35 को उठाकर, यह भी दंड है, क्योंकि 5 मिनट बहुत बड़ा समय है। वो अमृत वेले का टाइम, सबसे पहले तो इसको ठीक करना है, बाकी फिर ज्ञान और योग और जो भी कुछ है वो सब बाद में। जब तक ये ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसी अवस्था में व्यक्ति अशरीरी हो जाता है, और अशरीरी अवस्था में ही सभी प्रश्नों के उत्तर है, यहां तक कि शारीरिक बीमारियों के भी, क्योंकि सूक्ष्म में इन्वर्टेड कॉमा, जो भी शरीर की बीमारियां व्यक्ति को आती है, ये उसी के आह्वान की हुई है। अज्ञात में कभी ना कभी उसने ही आह्वान किया था। दूसरा पेशेंट है, उसको कैंसर, मुझे ना हो जाए, एक विचार चला गया अंदर, बैठ गया, लंबा समय तक प्रोसेस हुआ, प्रकृति में गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, सिमिलर विचारों को अट्रैक्ट किया, शरीर में बीमारियों की उत्पत्ति। सूक्ष्म में देखा जाए तो बीमारियां भी हमारी ही आह्वान की हुई है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, और यदि वो हमारी ही आह्वान की हुई है तो ठीक भी हम ही कर सकते हैं संकल्पों से। इसके लिए कहा योगी अर्थात जिसके संकल्प बहुत सूक्ष्म होते जाते हैं, योगी अर्थात जिसके संकल्प कम कम होते जाते हैं। गीता में लिखा है वह योगी जिसमें संकल्पों का अभाव है विश्व की सबसे अधिक सेवा करता है। वो नहीं जो केवल बोलते रहते हैं, वो नहीं केवल स्थूल कर्म कर रहे, वो नहीं, संकल्पों से सेवा विश्व की। तो यह पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न मुरली से, 9 प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, कौन सी स्मृति रहनी चाहिए, किस लिए? निराकारी अवस्था के लिए कौन सी स्मृति? मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, यहां आया हूं, रहने वाला वहां का हूं, टेम्पररी, बस थोड़े समय के लिए आया, काम पूरा हुआ और चल दिया। 3-4 दिन पहले एक मुरली थी, संसार स्वप्न है। क्या है? स्वप्न। जितनी मुरलियां होगी 5 साल की, एकमात्र ये मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है संसार स्वप्न है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज्ञान मार्ग का नहीं है, वेदांत मार्ग का है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यह सन्यासी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि यह संसार जो है मिथ्या है, स्वप्नव्रत है। पर यह एकमात्र ऐसी मुरली है जिसमें बाबा ने कहा कि यह संसार स्वप्नव्रत है। पर स्वप्नव्रत का एक दूसरा अर्थ बताया जो बीत गया है, यहां सब कुछ बीत गया है, एक अभ्यास किया जा सकता है। अमृत वेला, स्वयं को परम धाम में देखना और लंबा समय वहां रहना, और फिर दिनचर्या, काम, सेवाएं, एक्शन, डीट, सब कुछ किया, नुमा शाम के योग में जब बैठते हैं तो ये सोचना कि मैं परम धाम में ही था, वहां थोड़ी सी आंख लग गई थी और स्वप्न देखा, स्वप्न ये दिन भर था, पर मैं हूं अभी वहीं, फिर से था ऊपर ही, परम धाम मेरा घर है, मेरा निज स्वरूप है, निज धाम है, मैं वहीं हूं। आंख थोड़ी सी लग गई, स्वप्न देखा, और स्वप्न में जो सारे दिन भर जो हुआ ये स्वप्न था, सत्य इसमें कुछ भी नहीं है, मिथ्या है, स्वप्नव्रत है। इसके लिए यहां की कोई चीज मुझे कैसे प्रभावित कर सकती? किसी ने आके कुछ कह दिया, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया, कुछ ऐसी घटना होगी जो शॉकिंग थी, पर हम देखे शाम को कि मैं तो ऊपर हूं, नीचे तो स्वप्न है, खेल हो रहा है यहां। एक किसी ने बहुत सुंदर चित्र भेजा था, परमधाम ऊपर था, नीचे झूला, परमधाम से ही झूला लटक रहा था और नीचे एक झूले में एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, ये धरती थी नीचे। लेट्स प्ले ऑन अर्थ, चलो धरती पर खेलते हैं, ऐसा लिखा हुआ था एक लाइन के अभी। ऊपर परमधाम, वहां से ही झूला लटक रहा है, नीचे धरती छोटी सी बच्ची झूल रही है। लेट अस प्ले ऑन अर्थ, यहां हम खेल कर रहे हैं। कौन भाई, कौन बहन, कौन मां, कौन बाप, कौन किसका, खेल हो रहा है यहां। आत्माएं आई है, कभी किस शरीर में, कभी किस शरीर में, कितने शरीर बदले हैं, अभी इस शरीर में है, फिर यहां से निकल जाएंगे, किसी और शरीर में चले जाएंगे। खेल चल रहा है, स्वप्न है। तो दिन भर में जो भी चीजें होती है वो क्या करेगी, हमें प्रभावित नहीं करेगी। इसके लिए शाम को फिर यह अभ्यास करना है। मैं ऊपर ही थी आत्मा, और अभी फिर से ऊपर ही हूं। बीच में जो कुछ हुआ वो क्या था, ड्रीम। तो दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्मृति, यह स्मृति कि मैं अव्यक्त वतन वासी हूं, यह स्मृति कि मैं यहां का हूं ही नहीं, यह स्मृति कि अब मुझे यहां से लौट जाना है, वापस जाना है। यह दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेंगे। सारे प्रश्नों में एक ही चीज है, घुमा घुमा कर क्या याद रखना है। साक्षात्कार मूर्त के लिए क्या याद रखना है, जैसे वो श्रेष्ठ सम्मान लेते हो, आत्मा हूं, वो हूं, वो हूं। अब ये सोचो कि मैं लाइट के कार्ब में हूं, कार्ब तो नहीं कहा पर लाइट में के इसमें हूं, लाइट फैल रही है, अपने आप लाइट से साक्षात्कार होगा आत्माओं को, लाइट का अभ्यास करना है। जैसे बीच में पांडव भवन में हम लोगों ने अभ्यास किया था कि सारे दिन भर जो भी दिखे, इवन वस्तु, सब लाइट की बनी हुई है। ये जो घर है ये लाइट का बना हुआ है, ये झाड़ जो है लाइट का बना हुआ है, ये माइक जो है लाइट का बना हुआ है, ये मोबाइल जो है लाइट का बना हुआ है, ये जो भोजन की थाली है, मैं आत्मा लाइट की थाली में, लाइट का भोजन लाइट के हाथों से लाइट के शरीर में स्वीकार कर रही हूं, जो मेरे अंदर जाके लाइट बन रहा है और विश्व में लाइट फैला रहा है। कितना अच्छा संकल्प है, भोजन करते समय सब जगह लाइट ही लाइट, ये एक अभ्यास है कि सब जगह लाइट ही लाइट देखना, ये फैन लाइट, ये लाइट लाइट, सब लाइट है। तो वो जो देह का भान पकड़े हुए है, खींचता है, उससे आत्मा थोड़ी सी ऊपर उठेगी। हर वो प्रयास करना है जिससे हम देह से ऊपर उठ जाए, हर वो प्रयास, चाहे लाइट का अभ्यास, चाहे आत्मा का अभ्यास, चाहे एंजेलिक फरिश्ते का अभ्यास, क्योंकि शरीर भान जबरदस्त दुख है, शरीर को देखना दुख है, शरीर को हाथ लगाना दुख है, शरीर में रमन करना दुख है, सब दुख का जगत है शरीर। शरीर से थोड़ा भी कोई बाहर चले जाए, थोड़ा भी, तो बहुत सुख मिलेगा उसको, राहत मिलेगी। तो प्रश्न है, साक्षात्कार मूर्त कैसे बने, कैसे कराएंगे साक्षात्कार, जब ये सोचेंगे लाइट हूं, लाइट में हूं। चौथा प्रश्न है, ज्वालामुखी स्वरूप, कौन सा स्वरूप चाहिए, अब साधारण स्वरूप नहीं, साधारण नजर नहीं, कौन सा स्वरूप, ज्वालामुखी स्वरूप। इसके लिए सभी को एक दूसरा अभ्यास दे रहे हैं कि कल अमृत वेला ज्यादा से ज्यादा समय परमधाम में रहना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा समय, पहले यहां से चालू करना, धरती से, कि मैं आत्मा यहां हूं, सूक्ष्म वतन में गई, बाबा से वरदान लिए, संबंध जोड़े, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़ा, अब मैं आत्मा परमधाम में हूं, निर्विचार, और लंबा समय रमन करना वहां पर। कैसे रमन करेंगे, एक 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 उसके नामों में स्थित होते जाना है, मैं ब्रह्मलोक में हूं, पहला संकल्प चहुओर ब्रह्मांड है। एक 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 संकल्प में स्थित हो जाए, क्योंकि हमें लंबा समय टिकना है वहां पर। खाली चक्कर लगा के आने, हाथ लगा, टच किया और आ गए तो नहीं चलेगा। टाइम तो उधर हमको बढ़ाना है। ब्रह्मांड हो न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हे अर्जुन, वो धाम जहां न सूर्य है, न शशांक, न पावक, न शशि है, ना वो मार्तंड्य, ना वो सूर्य जहां है, वो जो धाम है वो मेरा धाम है। और वहां जाकर कोई वापस नहीं आता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां कोई चले जाए, ऐसा गीता में एक जगह लिखा है। वैसे तो आत्माएं आती है सतयुग में, तो मैं ब्रह्मांड में हूं, मैं परम धाम में हूं, सबसे ऊंचे धाम में हूं, थोड़ा देर इस संकल्प में टिकना। मैं शांति धाम में हूं, थोड़ा देर इस संकल्प में टिकना, संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। मैं मूल वतन में हूं, मूल में हूं, एकदम बीच। मैं सोल वर्ल्ड में हूं, मैं निराकारी दुनिया में हूं। वहां जाकर देखना सभी आत्माओं को, ये निराकारी आत्माएं हैं। मैं निराकारी दुनिया में हूं, मैं निर्वाण में हूं। यहां कोई आवाज नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई नॉइस नहीं, कोई साउंड नहीं, निश्शब्द है, निस्तब्ध है। मैं वहां हूं, साउंडलेस स्वीट साइलेंस होम में हूं। एक 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 संकल्प लाना है, कम से कम ऐसे 10-12 संकल्प तो टिकेंगे, कम से कम आधा घंटा परम धाम में। केवल कोई और दूसरा विचार नहीं, केवल एक के बाद एक संकल्प ला रहे और फिर उसकी किरणें मुझ में आ रही है। फिर पांच, हमारे जो 7 स्वरूप है, एक एक स्वरूप में टिकना। शांत, पवित्र, आनंद, आनंद धाम में हूं, पवित्र धाम में हूं, मुक्ति धाम में हूं, मोक्ष धाम में हूं, कैवल्य धाम में हूं। नए नए शब्दों का प्रयोग, नए नए संकल्प, नए नए सेंटेंस निर्माण करने हैं और परमधाम में टिकना है, तो टिकेंगे लंबा समय परमधाम। नहीं तो कैसे टिकेंगे? फिर इमेजिन करना कि मैं कंबाइंड हूं, उस कंबाइंड स्वरूप में थोड़ी देर, फिर सोचना कि मैं साक्षी हूं और वहां बैठकर सारा नीचे चल रहा खेल देख रहा हूं। सारा योग एक दिन का केवल परमधाम में, दूसरा कुछ करना ही नहीं। इनिशियल फॉर्मेलिटीज सूक्ष्म वतन में और सीधा परमधाम, लंबा समय टिकना वहां पर। और वो टिकने के बाद जब आत्मा नीचे आती है वापस देह के भान में, उसमें पावर भर जाती है। वो फिर वो नहीं रहती, क्योंकि उस शून्य की अवस्था से वो नीचे उतर रही है। कितने कम विचारों में रही, जैसे एक संकल्प लिया, बस मैं निर्वाण में हूं, यहां कोई आवाज नहीं, रुक गए, शांत हो गए। इमेजिन, सी, विजुलाइज, फील, एक्सपीरियंस। जैसे कोई महाज्योति सम्मुख है, वो और मैं एक हो गए, दो ज्योतियां एक हो गई। ये अनुभव, इसी को भक्ति मार्ग में समाधि कहा है। भक्तों ने कहा है भक्ति भगवंत और भक्त भक्ति एक हो जाते हैं तीनों। ये अनुभव, माय फादर एंड आई आर वन, क्रिश्चियनिटी, एक हो जाना। तुका मने होती तुझी माची, एक ज्योति, एक ज्योति हो गई दोनों की। ये अनुभव तो परमधाम में करना है। कितने प्रश्न हो गए? 14। पांचवा प्रश्न, जो अनन्य रतन है उनकी निशानियां क्या है? फिर से वही, वो कैसे होंगे? लाइट के जैसे घूमते फिरेंगे, डायरेक्शन देंगे थोड़ा सा उपराम, कारोबार से ऊपर। ऐसा नहीं कि कारोबार नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे, डायरेक्शन दिया और ऊपर हो गए। सबसे बड़ी कला है डिटैच हो जाने की। अभी अभी सेवा कर रहे, फुल इन्वॉल्वमेंट, 100% इन्वॉल्वमेंट, जैसे सेवा पूरी हुई मुझे कुछ भी नहीं पता, इतना डिटैच, यही योगी की। एट वन मोमेंट विवेकानंद ने कहीं कहा है, एट वन मोमेंट यू आर वर्किंग इन द फील्ड, एट अनदर मोमेंट यू आर गोइंग इन द टेम्पल एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड, एट अनदर मोमेंट यू आर गोइंग आउट एंड सर्विंग द पुअर, एट अनदर मोमेंट यू आर गोइंग इन द जंगल एंड गेटिंग लॉस्ट इन समाधि, एंड दैट इज योगी। एक समय तुम अभी अभी खेत में काम कर रहे हो, दूसरे मोमेंट में वहां से निकल गए मंदिर में पूजा कर रहे हो, वहां से निकल गए किसी गरीब की किसी रोगी की सेवा कर रहे हो, और वहां से निकल गए और सबको भुलाकर जंगल में बैठ गए और समाधि में डूब गए, इधर से उधर और उधर से उधर और उधर से उधर और उधर से उधर। ये जितना फास्ट होगा वो संपूर्णता की निशानी है। ऐसा नहीं हम तो योग में हम सेवा नहीं करेंगे, आज हमारा तो मौन है, ऐसा नहीं करेगा। बहुत समय पहले हमारे हॉस्पिटल में एक नई डॉक्टर आई थी, बीके बहन, तो ड्यूटी के टाइम पे उस अपना वो मौन रखती थी, तो सिस्टर बोलती थी डॉक्टर साहब पेशेंट देख लो, वो कहती थी मेरा मौन है। उसका मौन रहता था बीच में। मौन बहुत शक्ति तो है, बहुत शक्ति है। हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आता है, यहां सन्यासी है, पिछले 20 साल से मौन है शायद, आता है तो एक चिट पेपर में अपनी तकलीफ लिखता है, खांसी है बुखार है जो भी, बोलता नहीं है, फिर दवाई हम लिखते हैं वो उधर लिखता है और जाता है, बोलता नहीं पर चुप रहता है। हाँ, पर उसमें लिख के बताता है, पर तेज है उसमें, जो लंबा समय मौन रहते हैं और जब बोलते हैं तो पावर होती है उसमें। सबसे बड़ा उदाहरण शिव बाबा, 5000 साल मौन और फिर जो बोलता है तो सृष्टि पलट जाती है, सत्ताएं पलट जाती है, ऐसी पावरफुल वाणी होती है उसकी, क्योंकि बहुत लंबा समय मौन में रहा है। बोलना चाहा कुछ करूं कुछ करूं, पर पार्ट नहीं है। सातवां प्रश्न, चक्रवर्ती नहीं है सातवां, छठवा, छठवा चक्रवर्ती, छठवा बचा है ना, छठवा कौन सा है, चक्रवर्ती कैसे बनेंगे। ये बातें हमने इतनी सुनी है, इतनी सुनी है कि इनका कोई असर ही नहीं। चक्र जो चक्रधारी है वो चक्रवर्ती बने, हो गया काम पूरा हुआ, रखो इसको बाजू में। ये सारे शब्द, बाप समान बनना है, फॉलो फादर करो, लक्ष्मी नारायण बनना है, दिव्य गुण धारण करो, विनाश सामने खड़ा है, बाप आया है, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम महान आत्मा हो, इधर से सुना और इधर से गया, सुन सुन के वही कुछ हो गया है, सुन हो गया है, तो उत्तर तो सभी को पता है। ऐसा कोई भी नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसमें जो आता है जो स्पीकर नहीं है। अगर माइक आ जाए तो चिट्ठी भेजनी पड़ती है, अब बंद करो टाइम पूरा हुआ। एक बार माइक पकड़ लिया कि बस हो गया, और सामने वाला अगर बाहर का है फिर तो पूरा 4 घंटे में पूरा 8 दिन का कोर्स छोड़ेंगे नहीं इसको, आज पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रजा तो बनानी है। पालना मिलना बाद में, हमें बस अपना बनाना है, पालना सब उधर, जो देना है देते रहेंगे उसकी हमें चिंता नहीं। हमारे तो हाथ में शिकार आ गया, हम तो छोड़ेंगे नहीं इसको। वो कहता है मैं अभी अभी उधर जाके आया हूं, पांडव भवन में मुझे सब कुछ सिखाया हुआ है, वो कहता है उनका अलग, अब हमारा सुनो, उन्होंने सिखाया होगा तुमको, अब हम सिखाएंगे आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, उनका आत्मा परमात्मा अलग, अब हमारा आत्मा परमात्मा सुनो। तो क्या उत्तर बताया बाबा ने इसमें, चक्रवर्ती कौन बनेंगे, जो चक्रधारी है, चक्रधारी अर्थात कौन सा चक्र घुमाना है, पूछना है तो पूछना ही नहीं चाहिए इसको, क्योंकि सबको पता है, लाइट का चक्र, सेवा का चक्र। और सेवा का चक्र अर्थात केवल स्थूल में जहां वहां जाकर सेवा नहीं, सबसे बड़ी सेवा है एक ही स्थान पर बैठो और विश्व की परिक्रमा करो, सकल विश्व की एक ही स्थान पर बैठकर अमृत वेला। पहले से ही आत्माओं को देख लो, पहले से ही आत्माओं को इमर्ज करो। कल रात की क्लास में भी हम बता रहे थे स्पार्क में जो एक टेक्निक बताई है खास टीचर बहनों के लिए जो मुरली सुनाती है या क्लास कराते हैं, एस्ट्रल ब्रॉडकास्ट टूल। उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं, एक दादी जानकी का, मेरा सोसाइटी पुणे में बैठी है बहुत सालों पहले जब वहां थे, सामने बहुत कम स्टूडेंट्स थे पर उनको ऐसे संकल्प था कि सारा विश्व मेरे सामने है। या ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तन में है, हिस्ट्री हॉल में ऐसे मुरली चला रहे हैं जैसे पूरे विश्व सामने है। वो सामने बैठे हुए 10 लोग खाली, उनको लगता था ये कहां देख रहे बाबा ऐसे ऐसे। इसको कहा जाता है एस्ट्रल ब्रॉडकास्ट टूल, अर्थात जब सुनाओ तो ये सोचो केवल इनके लिए नहीं बताया जा रहा है, सारा विश्व सामने है। इस भाव से मुरली सुनाना, इस भाव से क्लास कराना, चाहे सामने केवल 4 ही लोग है वो भी सो रहे हैं पर हम किसको सुना रहे हैं, पूरा विश्व सामने है, सारे विश्व की आत्माएं सुन रही है। लास्ट संडे के मुरली में था, गर्भ में तो पहले ही आ गए थे, निकले अब हो ब्रह्मा बाबा विदेशियों से मुलाकात, गर्भ में तो पहले ही आ गए थे, आह्वान तो पहले ही हो चुका था, अभी बाहर निकले हो। तो आत्माओं को बीच डाल देना है। तो मुरली सुनाते समय या क्लास कराते समय क्या सोचना है, सारा विश्व सुन रहा है, हम स्टेज पर हैं, सारे विश्व के सामने सुना रहे हैं। तो ये है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती अर्थात सेवा में चक्रवर्ती, स्थिति में चक्रवर्ती। चक्र घूम रहा है अंदर, कौन सा, मैं था वो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, स्व के दर्शन का चक्र घूम रहा है। तो यह है छठवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, शरीर के हिसाब किताब चुक तो करने की विधि क्या है, जिससे नींद की खुराक विधि क्या है, 2 से 4 मिनट भी अशरीरी, सही में या जोक है, कितनी बड़ी बात बोलती, शरीर के सारे हिताब किताब चुक तो करने की विधि है 2 मिनट अशरीरी हो जाओ, इसका मतलब नहीं हो रहे, इसका मतलब जो हो रहे शायद उसमें खोट है, खोटा सिक्का है अशरीरीपन का। वास्तव में अशरीरीपन अर्थात शरीर रहा ही नहीं, रहे ही ना, बहाने ही नहीं रहे। कल रात में भी क्लास में उदाहरण दिया था एक काशी नरेश का, अपेंडिक्स का ऑपरेशन था 1910, उन्होंने कहा कोई भी मादक द्रव्य मैं नहीं लूंगा, एनेस्थीसिया वगैरह मैं नहीं लूंगा, वैसे ऑपरेशन करना है तो करो। 5 डॉक्टर आए थे यूरोप से काशी में उनका ऑपरेशन कराने, वो नहीं माने, उन्होंने कहा एनेस्थीसिया नहीं लूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं पीता, दारू बीड़ी सिगरेट चाय तक नहीं पीता, तो ये मैं एनेस्थीसिया कैसे स्वीकार कर लूं। उनको समझाया नहीं, बहुत दर्द होगा, चीर फार होगी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन छोटा मोटा थोड़ी होता है, चिल्लाओगे रोओगे सहन नहीं कर पाओगे। वो कहता है नहीं, मैं अपनी गीता पढ़ते रहूंगा, आप अपना ऑपरेशन करते रहना। वो कहते हैं नहीं, वो पहले एक्सपेरिमेंट करते, थोड़ा उसको सुई भी चुबाते हैं, उसको कुछ नहीं होता है, तो फिर ऑपरेशन भी करते हैं, वो अपने गीता पढ़ते रहते हैं, ऑपरेशन पूरा भी हो जाता है और उसको पता ही नहीं। वो कहते हैं आपने ये कैसे कर दिया, वो कहता है कि मैं जब गीता पढ़ता हूं और इतने लंबे समय से मुझे आदत है, अशरीरी हो जाता हूं, बहान ही नहीं रहता है बाहर क्या हो रहा है, और जब मेरा ध्यान ही नहीं तो मुझे दर्द कहां से। जैसे कितने सारे फुटबॉल, वो कौन है, रोनाल्डो, उसने भी अपना एक अनुभव, उस खेलते खेलते पैर में बहुत चोट लग गई, खून बह रहा है, टीवी में दिख रहा है, पर वो खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, टीवी में दिख रहा है कि उसको सारी दुनिया देख रही है, खून आ रहा है, पर उसको कुछ नहीं, वो अपना खेल रहा है। और जब जीत लिया, सब हो गया, तब कह रहा वो तो चोट आधे घंटे पहले लग चुकी थी, तब उसे पता ही नहीं, क्योंकि अवधान वहां नहीं था, अटेंशन वहां नहीं था, ध्यान कहीं और था। इसलिए शरीर में यदि यहां ध्यान है, अगर यहां से ध्यान अगर हटा दिया जाए तो यह पता भी नहीं चलेगा। तो उसने कहा काशी नरेश ने कि आप ये करते रहो, मेरा ध्यान सब गीता पढ़ने में, ऑपरेशन हो गया उसको पता ही नहीं चला, इतना कहां हमारा अटेंशन है। और किसी को अगर थोड़ा सा भी दर्द है और तो सारा ध्यान उधर है, तो इतना दर्द इतना बताते हैं लोग, हम भी क्या कम बीमार है क्या, हमारी बहुत बीमारी है, इतना सा छोटा सा कुछ लगा बहुत दर्द है, ऐसा भी नहीं हिल रहा है। और जब लोग कहते अच्छा, तो और मूवमेंट्स कम हो जाती है कि ज्यादा दर्द है, और पीठ में अगर कुछ होगा और MRI में कुछ आ जाए तो पहले जितना दर्द था MRI का रिपोर्ट देखने के बाद और बढ़ जाता है, फिर तो एकदम ऐसे पकड़ पकड़ के चलते हैं। अजीब साइकोलॉजी है माइंड की भी, वो दुख को भी बड़ा कर देता है और सुख को भी बड़ा कर देता है। सुख उतना है नहीं जितना हुआ, सफलता उतनी नहीं है जितनी है, पर वो सफलता को बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है और दुख को भी बड़ा चढ़ा के बताता है। बीमारी को कोई ऐसा है कि जो एक्सेप्ट करे, मेरी तो बहुत ही कम बीमारी है, अरे नहीं नहीं बीमारी क्या हो गई, अभी तो 1 महीना लगेगा हमको पूरा ठीक होने को, रिकवरी के लिए। कभी कभी आती है, हम भी तो क्या, हम खाली दूसरों बीमारों को ही देखने जाए, हमको भी तो देखने आने चाहिए कोई। अगला प्रश्न, कौन सा प्रश्न था ये, सातवां, आठवां प्रश्न, मायाजीत कैसे बने, एकदम नई पॉइंट बताइए, शायद आज तक ये पॉइंट नहीं है। क्रोध पर क्रोध करना कि बुराइयों पर, कमजोरियों पर क्रोध करना, यह वैसे भक्ति मार्ग की पॉइंट है। भक्ति मार्ग में कहा जाता है अगर क्रोध ही करना है तो अपने आप पे करो या भगवान पे करो कि क्यों तू प्रकट नहीं हो रहा है, दिशा मोड़ दो क्रोध की। तो यहां क्या कहा बाबा ने, मायाजीत बनना है तो किस पे क्रोध करो, अपनी बुराई पर, जिससे मुक्त होना है, मोह से मुक्त होना है, उस मोह से क्रोध करो, हे मोह क्यों नहीं निकलता बाहर, हे दुख क्यों नहीं निकलता बाहर, हे विकार क्यों नहीं निकलता बाहर, उस विकार पर क्रोध करना, उस कमजोरी, बुराई, संस्कार, आदत, दुख, दर्द, पीड़ा, एडिक्शन, वाइस, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, फ्लॉ, खामी, कमजोरी, इम्परफेक्शन, उस पर क्रोध करना। कितनी अच्छी विधि है ये, नई बात बताई ना, इस पर क्रोध करो कि निकल यहां से। लास्ट प्रश्न, गांव वाले क्यों पसंद है बाबा को, क्योंकि बाबा खुद गांव वाला है, मैं अपने परम धाम के गांव से आता हूं, मैं इस गांव में आता हूं, इस छोटे से गांव में, यह भी कहता है कभी, मैं मगध देश में आया हूं मागधों से मिलने। तो गांव के लोग कैसे होते हैं, बहुत ही भोले वाले होते हैं, क्या भोलापन होता है उनका, भोला अर्थात मूर्ख या चालाक, बीच का है क्या, भोला अर्थात क्या, हाँ रामायण में दिखा है, श्री राम जब विश्वामित्र शख्स के साथ घूम रहे हैं तो गार्डन में जाते हैं, सीता को देखते हैं, सीता राम को देखती है, राम सीता को देखते हैं, लंबा समय देखते रहते हैं, और आकर अपने गुरु को ऐसी प्राइवेट बात सारी बता देते हैं कि मैं ऐसे गया था और वो दिखी और मैं उसको देखता रहा, वो मुझे देखती रही, ऐसी बात कोई बताता थोड़ी है। सरल स्वभाव छुअत छल नाहीं, तुलसीदास ने लिखा है राम का स्वभाव कैसा है, सरल है, छल उसको छूता नहीं है, छल क्या है उसे पता नहीं, षड्यंत्र करना उसे वो जानता नहीं, भोला अर्थात छल कपट इन सब से वो किसी को कैसे गिराए, किसी को कैसे फंसाए, किसी के प्रति क्या षड्यंत्र करे, उन्होंने हमारे लिए ये किया, हम भी उनके साथ ऐसा ऐसा करेंगे, हम उनके डिपार्टमेंट में गए थे, उनको उन्होंने हमको ये नहीं दिया, आने दो उनको हमारे डिपार्टमेंट में, हम देखेंगे। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव, एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा है, कैसा जाल हमने बुन दिया किसी और को फंसाने के लिए जिसमें हम खुद ही फंस गए, बन किसके लिए, दूसरों को फंसाने के लिए बुना था, खुद उसमें फंस गए। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव, सो जिसमें डिसेप्शन नहीं, धोखा छल धोखाधड़ी कपट नहीं, वो सरल चित्त जिसका है वो भोले। तो ऐसे जो भोले हैं उस भोलेनाथ को पसंद है, उस भगवान को ऐसे भोले बच्चे पसंद है। तो ऐसी ये कितने प्रश्न थे, 9 प्रश्न थे। सारे प्रश्नों का सार अव्यक्त स्थिति, सारे प्रश्नों का सार अंतवाहक शरीर, लाइट के कार्ब में रहना, लाइट देखना, फरिश्ता स्वरूप में रहना, शक्तिशाली अनुभव करना, अशरीरी अनुभव करना, ये बहुत अध्यात्म की सारी ऊंची अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के लिए बहुत सारी धारणाओं की आवश्यकता है, तुरंत नहीं हो जाएगी, खाली पढ़ लिया और हो गई। शक्तिशाली अमृत वेला शुरुआत वहां से, जो शुरुआत में बताया था, अगर वही ठीक नहीं है तो ये जितनी चर्चा अभी की केवल थियरी मात्र है, केवल थियरी, दूसरों को सुनाए जा सकते पर अनुभव कुछ नहीं हो रहा है। अध्यात्म अनुभव का नाम है, स्पिरिचुअलिटी इज रियलाइजेशन एक्सपीरियंस। किसने कितना, वो तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बहुत सूचनाएं हमने एकत्र कर ली है, क्रोध को कैसे जीते इसके ये बातें, क्रोध कैसे नियंत्रण करे ये बातें, ये सूचनाएं हैं, अनुभव कुछ नहीं, तो अनुभव करना है। तो इतनी बातें हैं आज की मुरली में, क्या क्या कहा, एक दो मिनट आप सब बताएंगे। सुबह की साकार मुरली शॉर्ट रिविजन, बाबा बाबा करते रहो और रोते भी रहो, बाबा ये दुख है वो दुख है और बाबा बाबा भी बोलते रहो, ऐसे तो नहीं ना, एक तरफ बाबा बाबा कहना एक तरफ आंखों से आंसू बहाना, दोनों काम साथ साथ नहीं करने। उसके जैसा मीठा और उसके जैसा प्यारा दुनिया में और कोई नहीं, तुम सा हसीन बाबा, उसके जैसा हसीन सत्यम शिवम सुंदर और कोई नहीं संसार में, उससे प्रीत। और क्या कहा, कल कहा ना कुमारियों से, ऐसा वर और ऐसा घर, वर ऐसा कि सारी दुनिया उसकी महिमा करता है, और घर ऐसा जहां प्राप्त कुछ नहीं तो वरमाला ऐसा वायदा करो कि केवल इसके गले में डालेंगे। और स्वीट स्वीट और स्वीटेस्ट और खुशबूदार और संकल्प बोल कर्म बाप समान, कर्म संबंध संपर्क संस्कार सब कुछ बाप समान, उसमें परमात्मा प्रेम परमात्मा प्यार परमात्मा साथ परमात्मा मदद कोऑपरेशन सहयोग प्राप्त होगा फिर। और समानता, समान समय समीप आ रहा है तो समान समीप संपन्न भी बोलते, टू लेट का बोर्ड तब कहा था लगा नहीं, अब लग चुका है, ये मुरली पुरानी है जो वरदान जहां से लिया होगा, अब लग चुका है, एटलीस्ट तीव्र पुरुषार्थ में तो लग चुका है। और योग अग्नि प्रकट करनी है पाप भस्म करने के लिए। और आग का अनुभव, आग को देखा है क्या, रोज एक बार देखना किचन में जाकर क्या करना है, आग को देखना है, पता रहना नहीं, देखना रोज, ये है आग कैसी जल रही है, डालो उसमें कुछ कैसे भस्म होता है, वैसे यहां आग जले, धधकती हुई अग्नि पवित्रता की वैराग की प्रभु प्रेम की, और जिसमें सब भस्म हो रहा है, अब तक का जो भी पास्ट है सारे दुख उसमें जलकर खलास, और केवल तीव्र पुरुषार्थ के लिए आत्मा तैयार। इसके लिए आग को देखने का अभ्यास करना है, कैसी आग उठती है उसकी वो लपटे, वैसी यहां प्रकट हो जाए। और
तुम ही अर्जुन हो, तुम ही वो हो, और तुम ही वो हो, और तुम ही सब कुछ हो। जो दुनिया ऐसा दुनिया में प्यारा कोई और है ही नहीं बाप के जैसा। तो शास्त्रों में जितनी बातें, एक बात हम अभी आते आते प्रभाकर भाई से कह रहे थे कि ये जो कहानियां हैं शास्त्रों की, महाभारत रामायण, अब तक चालू है, जबकि सबको पता है फिर भी चालू है, इतना प्रचलन। और बाकी इतनी सारी छोटी छोटी कहानियां लोग भूल गए उनको, जरूर ये कहानियां बड़ी ऊंची अवस्था में बना बैठ के लिखी होगी लोगों ने, द्वापर से जो ऋषि मुनि हो गए, बहुत पावरफुल स्टेज में लिखी होगी, क्योंकि जो कलाकृति कालजयी हो गई है वो कलाकार ने सर्वोच्च अवस्था में बैठकर ही लिखी होगी, नहीं तो अब तक लोग क्यों सुन रहे हैं। सबको पता है रामायण में क्या है, फिर भी उस पर सीरियल बनते जाते हैं, राम कथा रामलीला होती रहती है, सबको पता होने के बाद भी, तो कैसी पावरफुल स्टोरी लाइन होगी। ठीक है, और कोई? चलो, तो कल से, ट्यूसडे से लेकर तो अगले सैटरडे तक हर दिन का अमृत वेला शक्तिशाली, एक दिन भी मिस ना हो। और परम धाम में लंबा समय टिकने का अभ्यास करना है, किसी एक क्लास में या ड्रिल में, परम धाम की 7 ड्रिल की हमने चर्चा की थी, तो परम धाम में टिकने का अभ्यास, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास, सारे दिन भर लाइट देखने का अभ्यास, शरीर भान में नहीं आ जाए कि जिससे इतना बड़ा कोई विकर्म हमसे ना हो जाए, छोटे तो होने नहीं देना है, पर कभी कभी एकदम से बड़ा हो जाता है, फिर व्यक्ति पश्चाताप करता है। ऐसा कुछ देखना नहीं है, इस माया से थोड़ा दूर रहना है, डिजिटल माया से। एक चित्र किसी ने भेजा, डिजिटल क्रूसिफिक्स, एक व्यक्ति लेटा हुआ है, एक पैर इधर है, एक पैर इधर, एक हाथ इधर, ऐसे इधर व्हाट्सएप, इधर फेसबुक, और इधर से उसको किलो से ठोक दिया गया है, चिपक गया है बेचारा। जैसे वो जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया, वैसे व्यक्ति एक हाथ इधर, इधर फेसबुक और इधर कुछ, इधर व्हाट्सएप, इधर यूट्यूब, बंद हो गया है। डिजिटल क्रूसिफिक्स, सूली, क्रूसिफिकेशन ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण आत्मा को सूली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सेवा के लिए बहुत अच्छा है, इसका प्रयोग करो, पर माया ना बन जाए। अगर बन रही है तो हटा दो उसको कुछ समय के लिए। एक कुमार ने अनुभव सुनाया था, उसने कहा ये मोबाइल ही मेरे लिए माया, मैंने मोबाइल ही चेंज कर दिया, वो पुराना वाला ले लिया नोकिया का, वो जो होता है ना जिसमें हेलो मैसेज और कॉल, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है, और अभी ठीक लग रहा है अवस्था। ऐसा माया ने पकड़ लिया था कि अब ठीक लग रहा है, जब से ये मोबाइल आया है 6 दिन से हाथ में, सिंपल वाला, तो एकदम ही अति में अगर चले जाए तो एकदम झट से उसको हटा दो। तो अगले 7 दिन पावरफुल स्टेज, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, परमधाम का अनुभव, और जो रोज मुरली चलती है उसका दिन भर चिंतन करना है, उसमें से टॉपिक्स निकालने हैं। जैसे आज भगीरथ, कौन भगीरथ, कहां का भगीरथ, मुझ निर्गुणहारे में गुण नहीं, ऐसा कब कहते हैं, अब क्या है इसका अर्थ, रहे गहरे रास क्या है ज्ञान के, एक एक पॉइंट निकालना और सारे दिन भर लिखने का अभ्यास करना, थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा करना। यहां रोज क्लास होता है रात में, आप यहां आ सकते हैं, जो भी चर्चा होती है उसमें पार्टिसिपेट करना। ओम शांति।